ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से लेकर के आप सभी ने बहुत सुंदर बातें अलग अलग सत्र में अलग अलग महान आत्माओं के द्वारा उनके मुख कमल से सुनी और आत्मसात भी अवश्य किया होगा। लेकिन अभी का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो कैसे अवतरित होते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने उस माध्यम को चुना और उसका प्रमाण क्या है, इन सब बातों के ऊपर आज हम देखेंगे। क्योंकि अक्सर लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज अपने ब्रह्मा बाबा को ही भगवान मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है, परंतु आज हम इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे आपके सम्मुख कि हम ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं मानते हैं, आदर्श मानते हैं कि जिनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इस तरह से तराशा और कैसे वो परमात्मा के माध्यम बने, हमें भी अपने जीवन को उसी तरह से तराशना है और उस मंजिल को प्राप्त करना है। जब भगवत गीता में भगवान ने यह वायदा दिया कि अधर्म के समय पर मैं संसार में अवतरित होता हूं, तो जरूर है कि अधर्म का समय था तो सतयुग तो नहीं होगा, त्रेता भी नहीं होगा, द्वापर भी नहीं होगा, घोर कलयुग होगा। क्योंकि घोर कलयुग ही पाप आत्माओं का समय माना जाता है, तो घोर पाप आत्माएं जहां है वहां पर ही परमात्मा को आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करनी होगी। अच्छा, तो कलयुग के अंदर जब घोर अधर्म का समय हो तो ऐसे समय में दिव्य आत्माएं तो नहीं होगी, मानव आत्माएं ही होगी, ये तो जरूर है। और जब साथ में ये कहा कि साधुओं का भी परित्राणायम साधु नाम, तो साधुओं का भी मुझे ही उद्धार करना है, तो अवश्य ये कहेंगे कि घोर कलयुग के समय साधु महात्माओं को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। क्योंकि जहां चारों ओर पापाचार हो रहा हो तो उनको, उनके ऊपर भी कई अत्याचार तो होते हैं कि नहीं होते हैं, तभी वो भी दिल से उनको पुकारते हैं और इसीलिए भगवान को आना ही पड़ता है। क्योंकि जिन संतों ने, महात्माओं ने, जिन साधुओं ने अपने जीवन की इतने गहन तपस्या की हुई हो और उनके ऊपर जब अत्याचार हो अधर्मी लोगों का, तो भगवान भी सह नहीं सकता है। जिन्होंने इस भारत भूमि को थमाया, जिन्होंने इस भारत भूमि के अंदर त्याग तपस्या के माध्यम से अनेक लोगों का जीवन बनाने का कार्य किया हो, उसके ऊपर जब अत्याचार होने लगे अधर्मियों का, तो भगवान सह सकेगा क्या? नहीं सह सकता है। कई बार पहले जब पढ़ते थे इस लाइन को तो विचार चलता था कि साधुओं का उद्धार करने क्यों आना पड़ता है भगवान को। लेकिन फिर समझ में आने लगा कि सचमुच इतनी महान आत्माओं के ऊपर जब कोई अधर्मी लोग, कई जगह ऐसे किस्से सुनते हैं हम, कई जगह साधुओं को जलाया गया जिंदा, महाराष्ट्र में बॉर्डर पर पालघर में कितना उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो जरूर है भगवान को तो ऐसे समय पर अवश्य आना ही पड़ता है उनका उद्धार करने के लिए। तो इसलिए कहा कि जब भगवान आएंगे तो किस रूप में आएंगे, एक साधारण नर स्वरूप में ही आना पड़ता है, क्योंकि यहां कोई दिव्य आत्माएं तो है नहीं। और इसीलिए जब नर स्वरूप में अवतरित होते हैं तो उसी नर के द्वारा जो कहा जाता है, नर ऐसी करणी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे जो श्री लक्ष्मी बने, पूरी सृष्टि का परिवर्तन करना। तो जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो एक नई सृष्टि की सर्जना का कार्य करना है, अधर्म का विनाश करना है, सतधर्म की स्थापना करनी है। तो इसी संसार का एक व्यक्ति साधारण नर स्वरूप को चुनते हैं, और जब चुनते हैं तो नाम देते हैं ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा को सृजन का कार्य कराना है, इसीलिए नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। शास्त्र में थोड़ी मात्रा परिवर्तित हो गई है कि प्रजापति कह दिया, वास्तव में प्रजापिता है कि पिता समान, वो उम्र है और पिता समान बन करके सबको पालना देते हैं और तभी नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का एक चित्र देखा, और ब्रह्मा कुमारी जिसको ब्रह्मा कहते हैं, दोनों में तो बहुत अंतर है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा, ये ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जो बुजुर्ग है, बाकी कोई देवताओं को बुजुर्ग अवस्था में नहीं दिखाया है, सब एवर ग्रीन एवर यंग है। दूसरी बात, ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मूछ वृद्ध अवस्था दिखाई गई है। अब दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था ये मनुष्य तन का प्रतीक है, क्योंकि देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है, वृद्धावस्था नहीं आती है, इतनी सतोप्रधान आत्माएं होती है जो शरीर भी उनका सतोप्रधान प्रकृति से बना होता है, तो वृद्धावस्था नहीं दिखाई जाती। चाहे लक्ष्मी नारायण को आप देखो, चाहे कृष्ण को देखो, श्री राम को देखो, जिस भी देवी देवताओं को देखो, किसी को भी वृद्ध अवस्था ये दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई है। तो दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था ये मनुष्य तन का प्रतीक है। दूसरा, ब्रह्मा को कमल आसन पर दिखाया, ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखाया, और चारों मुख चार दिशाओं में है, और सहस्त्र भुजाधारी दिखाया, हाथों में शास्त्र दिखाया। जरूर उसके पीछे भी कोई भाव होगा। आज की दुनिया के अंदर कोई बच्चा अगर दो मुंह वाला भी पैदा हो जाए तो क्या कहेंगे, एबनॉर्मल चाइल्ड उसको कहा जाता है। उसको कोई भगवान का अंश मान करके पूजते नहीं है। बीच में सुना था कि एक बच्चा तीसरे नेत्र से पैदा हुआ, उसको तीसरी आंख भी थी, तो भी किसी ने उसको पूजा नहीं या उसके मंदिर में स्थापना नहीं की। दो मुंह वाले तो कई बच्चे हैं, एबनॉर्मल चाइल्ड कह देते हैं उनको। ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखा है, उसको तो कभी एबनॉर्मल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। पहली बात तो कमल के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता है, लेकिन उनको कमल आसन धारी दिखाया। भावार्थ ये कि जब परमात्मा संसार में अवतरित होते हैं, उस समय जो सृष्टि थी कीचड़ से भरी सृष्टि थी, और कीचड़ से भरी सृष्टि में एक कमल को खिलाया, अर्थात एक दिव्य आत्मा का जन्म होता है, और उस दिव्य आत्मा को इस कीचड़ से ऊपर कमल की तरह न्यारा और प्यारा रखा है। कमल के नीचे जो कीचड़ होता है, उसमें कमल के बहुत बड़ी एक दुनिया होती है, लेकिन उस कीचड़ का एक भी बूंद कमल के ऊपर ठहर नहीं सकता है। इतनी कोमल पंखुड़ियां होती है उसकी, सरक जाता है, इतना न्यारा और प्यारा है। तो कीचड़ वाला संसार था जो आज प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं, संसार के अंदर किस प्रकार के कृत्य होते हैं, और उस कृत्य को देखते हुए सुनते हुए कह देते हैं घोर कलयुग आ गया, इतना अनर्थ हो सकता है, वो ऐसे ऐसे कृत्य हो सकते हैं, सोच भी नहीं सकता है इंसान। पवित्र आत्माएं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं इस संसार के अंदर होने लगी है। तब कहा कि कीचड़ से भरा संसार था, उसमें कमल को खिलाया। एक साधारण नर स्वरूप जिसका दिव्य जन्म, आध्यात्मिक जन्म हुआ, इसलिए उसको कमल आसन दारी दिखाया। और फिर उसके द्वारा क्या किया गया? तो परमात्मा ने सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए कि एक एक शास्त्र बैठ के भगवान ने नहीं पढ़ा, लेकिन सर्व शास्त्र के जो एसेंस है, निचोड़ है, वो उसके मुख कमल से सुनाए। किसको सुनाया? सारे संसार की आत्माओं को। सारा संसार कैसे दिखाया जाए? तो ब्रह्मा के चार मुख चार दिशा में, अर्थात कि उनके मुख कमल से जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान संसार की चारों दिशाओं में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्र भुजाओं से। आज हमारा कोई मददगार होता है तो हम यही कहते हैं, ये तो मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसके बिना काम नहीं होता है। है ना, आप सबके भी राइट हैंड होंगे। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये जो दिव्य कार्य परमात्मा ने करना आरंभ किया, सहस्त्र आत्माएं मददगार बन गए इस ज्ञान को फैलाने के लिए सारे संसार के अंदर। और इसीलिए ये कहते हुए हमें गर्व भी होता है, खुशी भी होती है कि आज पांचों ही खंडों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में जो केंद्र चलता है, वहां परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान अनेक आत्माओं को दिया जाता है। ये कार्य ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं है, बिना परमात्मा शक्ति के, भगवत शक्ति के ये कार्य संभव ही नहीं है। कोई इंसान ये कर नहीं सकता है।
कोई इंसान 140 देशों के अंदर केंद्र खोल दे, दिखा दे वे कोई, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आध्यात्मिक संस्था क्यों ना हो, वो भी 140 देशों में नहीं फैल सकती है। ये भगवत शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने हमें निमित्त बना करके सारे संसार के अंदर ये दिव्य कार्य के लिए हरेक को निमित्त बना दिया। तो जो भक्ति के अंदर ब्रह्मा का चित्र हमने देखा, ऐसा तो कोई व्यक्ति इस समय आने वाला है नहीं जो नव सृजन का कार्य करे। इसीलिए कहा वो प्रतीकात्मक है, जिसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। ब्रह्मा बाबा, जिसको हम कहते हैं दादा लेखराज, आप सभी ने उसकी कहानी सुनी होंगी कि दादा लेखराज एक हीरे जवाहरत का व्यापार करते थे और उस समय अखंड भारत था, तो हैदराबाद सिंध में रहते थे। लेकिन एक जो कारोबार था उनका कलकत्ता में भी चलता था, लखी बाबू के जवेरे की दुकानें, आज भी कलकत्ता अगर चले जाओ वो पूरी गली मिलेगी लखी बाबू के जवेरात, आज भी है उसी के नाम से। इतना प्रसिद्ध हीरे जवाहरत का व्यापारी थे। और तीसरा व्यापार बाबा का चलता था बॉम्बे में, जो उनका बड़ा लड़का संभालता था। ये तीन स्थानों पर बाबा का ये कारोबार चलता था। बाबा का जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था, लेकिन लगभग 4 साल की आयु में उनके पिताजी एक स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका जब देहांत हो गया, माँ पहले ही चले गए थे, उसके बाद पिताजी की छत्र छाया में बड़े, और हेडमास्टर का बच्चा होगा तो कैसा होगा। उस जमाने के 36 से पहले की बात है, स्कूल का जो हेडमास्टर होता है बड़ा स्ट्रिक्ट होता था, डिसिप्लिन्ड होता था, प्रिंसिपल्स वाला होता था। उसका बच्चा कैसा होगा, इतना ही डिसिप्लिन्ड, प्रैक्टिकल और हर रीति से जीवन के अंदर कई सिद्धांतों को, जैसे उनको गर्भ संस्कार के रूप में ही प्राप्त हुए थे। जब 4 साल की आयु हुई तो बाबा के पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया, तो चाचा ने उनको बड़ा किया। और चाचा जैसे उसको बड़ा करने लगे, तो 8-10 साल के जब हुए तो चाचा की किराने की दुकान थी। तो उस समय जो थे, कभी कभी लखीराज बाबू को बिठा देते थे कि जाओ दुकान पर बैठो, कोई नहीं है। बाबा का स्वभाव बचपन से ही दया, दयालु, रहम दिल से भरपूर, तो कभी कोई गरीब आते थे तो उनको तोल में थोड़ा ज्यादा दे देते थे। एक दिन पकड़े गए, चाचा ने देखा, अरे तू तोल में ज्यादा दे रहा है, ये तो दुकान लुटा देगा क्या। और सिंध कम्युनिटी के अंदर व्यापारिक दिमाग जो होता है, आप सभी परिचित है किस प्रकार के होते हैं, तो दया भावना आदि सब कुछ होता है, लेकिन तोल में, इसका मतलब तुम रोज ही ज्यादा देता होगा। तो कहा तू एक काम कर, यहां तेरा बैठने का कोई मतलब नहीं है। फिर उनको कहा कि तुम ऐसा करो, अभी जैसे जैसे 14-15 साल का हुआ तो कहा अभी अपना कुछ शुरू करो, सीखो। तो उस समय बाबा 15 साल की आयु में किसी जवेरी के दुकान में काम करने गए, तो धीरे धीरे उनकी परख शक्ति हीरे में इतनी तीव्र हो गई कि देखते ही हीरे को परख लेते थे। तो फिर वहां से अलग होकर के उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। और जैसे कहा, बाबा की एकदम पारखी नजर थी, बहुत सहजता से असली नकली को परख लेते थे, असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है। और हीरे का व्यापार एक रॉयल व्यापार माना जाता है, जो साधारण लोग इतना हीरा नहीं पहनते हैं। तो बाबा का जो संबंध जुड़ा, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ जुड़ा, कई राजघराने के लोग बाबा को बुलाते थे कि भाई हमारे रानियों के लिए हार लाना है, ये लाना है। तो बाबा सारा उठा करके, वो तो दुकान पे नहीं आएंगे, तो दिखाने के लिए बाबा वहां ले जाते थे। तभी वो राजाएं महाराजा कह देते थे कि राजाई गुण तो भगवान ने आप में भरे हैं, इतनी रॉयल्टी है आपके अंदर, शालीनता है, शायद भगवान से कहीं गलती हो गई जो आपको राजा न बनाकर हमको बना दिया। बाबा हमेशा ये कहते थे, भगवान से तो कभी गलती होती नहीं है। और इसलिए जो है बाबा का सम्मान बहुत राजा महाराजाएं करते थे। कलकत्ता में जब थे तो नेचुरल है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे अंग्रेजों का राज आया, तो क्वीन विक्टोरिया के लिए ज्वेलरी बना करके देते थे। उदयपुर के राजा महाराजाओं के लिए भी बाबा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, नेपाल के राजाओं के साथ में। तो इन सभी राजाओं के साथ बाबा का बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध था, जिनकी ज्वेलरी बाबा बना करके देते थे। और कई बार बाबा डिस्प्ले के रूप में बच्चों को ले जाते थे, बाबा की जो लौकिक में बेटी होती थी उसको हार आदि पहना करके ले जाते थे, जिसको देखकर रानियां कहती थी हम सही बना कर दीजिए, बाबा फिर दूसरे दिन उनको दे देते थे। कभी कभी बच्चे भी हमको तो वही चाहिए जिद करते थे, ये ताले के रूप में लेके गए थे। बाबा समझा देता था, बच्चे बासी खाना खाएगी, वो तो बासी हो गए ना, आज तेरे को नया बना करके पहनाएंगे। इतनी बाबा की रॉयल्टी थी कि अगर बच्चों से हीरे की वो बैंगल्स पहनते हुए नीचे गिर जाए तो बाबा कहते थे उसको गिरी हुई चीज को उठाकर पहनना नहीं है, नौकरों को दी जाती थी। ये बाबा की रईस वृत्ति थी, इतनी शाहूकारी थी। बाबा के जो लौकिक में बड़े बेटे की बहू थी, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय थे, वो कभी कभी अनुभव सुनाते थे कि मेरा भाई ने जब रिश्ता जोड़ा था इस घर से तो यही कहा था बाबा को कि मेरी बहन गलीचे पर ही चलेगी, जमीन पर नहीं चलेगी, और उसके पास हीरो का एक पूरा कबाट होना चाहिए, सोने का कबाट होना चाहिए, चांदी का कबाट होना चाहिए। इतनी ज्वेलरी देता था बाबा उनको, इतनी रईस थी कलयुग के अंदर भी। कहा जाता है कि दादियां जब अनुभव सुनाती थी कि बाबा इतना सम्माननीय व्यक्ति था उस समय समाज के अंदर, उनके कहे हुए शब्द को जैसे पत्थर की लकीर मान देते थे। जब बाबा को निमंत्रण दिया उदयपुर के महाराजा ने और बाबा उदयपुर आए तो क्या भव्य स्वागत किया था बाबा का, और इतना शानदार स्वागत का सारा बंदोबस्त किया की लाइफ थी। लेकिन भक्ति भाव के संस्कार भी बहुत गहरे थे कि बाबा जीवन के अंदर कभी भी गीता के पाठ किए बिना कोई कारोबार आरंभ नहीं करते थे। एक पंडित जी रोज आते थे मंदिर से, सारे परिवार वालों को बैठना होता था, वो गीता का पाठ कर, रोज गीता का पाठ, और उसके बाद ही कारोबार आरंभ होता था। एक बार कोई क्लाइंट आए थे बाबा के पास और पंडित जी आ गए थे, गीता का पाठ शुरू होने वाला था, तो बाबा को संदेशा दिया कि कोई क्लाइंट को बहुत अर्जेंट है और उसको ज्वेलरी चाहिए, बाबा ने कहा कि मैं धर्म को छोड़कर कर्म को महत्व दूं ऐसा मैं नहीं हूं। और धर्म को महत्व दिया कि भले वो क्लाइंट बैठा रहे, एक घंटा वो बैठा रहे जब तक पाठ चला, पाठ पूरा होने के बाद ही बाबा ने उसके साथ कारोबार की बातें की। इतने भक्ति भावना के संस्कार जैसे कूट कूट करके भरे हुए थे। गुरुओं में श्रद्धा बाबा की बहुत थी। जीवन में 12 गुरु किए थे। हर गुरु से कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि बाबा एक सत्य गुरु की खोज में आगे होते थे, बढ़ते थे कि आखिर भी सत्य क्या है। एक बार का अनुभव सुनाती हूं कि बाबा का एक गुरु था, उसने बाबा को टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम भेजा कि मुझे अब भी आपसे मिलना है और 10,000 रुपए की आवश्यकता है। अब 36 पहले की बात, 36 पहले 10,000 माना आज का कितना करोड़ों बराबर होता है। उस समय आने आने की चीजें मिलती थी, 10,000 माना बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट माना जाता था। बाबा के घर में फंक्शन चल रहा था, बच्चे के नामकरण की विधि थी, छठी पर नामकरण होता है, सारा परिवार आया हुआ था और अचानक ये टेलीग्राम आया। बाबा ने कहा कि मैं निकलता हूं। सारे परिवार ने कहा कि ये छठी का कार्यक्रम पूरा करके निकलो। बाबा ने कहा गुरु का बुलावा काल का बुलावा होता है। काल को हम ये नहीं कहते मेरे घर में कार्यक्रम है इसलिए बाद में आता हूं। इतना गुरु का महत्व था उनको जीवन के अंदर। और उसी समय निकल गए और निकल जाने के बाद जब वहां पहुंचे तो गुरु ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। बाबा ने पूछा भी नहीं, जो 10,000 रुपए लाए थे गुरु को सौंप दिया। गुरु के ही मन में आया मुझे सुनाना चाहिए उसको कि मैंने ये 10,000 रुपया क्यों मांगा है। तो उस समय गुरु ने कहा कि मेरा एक शिष्य, अनन्य शिष्य सट्टे में हार गया है और उसकी इज्जत बचाने के लिए ये 10,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी मुझे, इसीलिए मैंने आपसे मांगने किया। तब बाबा के मन में इतना सा विचार जरूर आया कि अगर एक गुरु शिष्य को सट्टे से नहीं मुक्त कर सकता है तो हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे करेगा। इस तरह से दूसरे गुरु की खोज में ऐसे 12 गुरु किए और बाबा की खोज हमेशा बनी रहती थी। संपन्न परिवार था, व्यापार बहुत अच्छा चलता था, कुछ विशेष बाबा दान करते थे समाज में निकल करके। नारायण का परम भक्त था, नारायण का चित्र हमेशा अपने जेब में रखते थे। एक दिन कहीं चित्र बाबा ने देख लिया कि लक्ष्मी जी नारायण के पैर दबा रही है, विष्णु के पैर दबा रही है। बाबा को अच्छा नहीं लगा कि लक्ष्मी को ये दासीपने से मुक्त। चित्रकार को बुलाकर कहा कि ये चित्र ठीक नहीं बनाया आपने, लक्ष्मी दासी नहीं हो सकती है, वो महारानी है, वो नारायण के साथ बैठने वाली है, उसको ये दासीपने से मुक्त कर दो, ये चित्र से उसको साथ आओ। बाबा की सोच पता चलती है कि नारियों के प्रति बाबा की सोच कैसी थी, कि देवताओं को भी इस स्वरूप में नहीं देख सकते थे बाबा। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी गीता का अध्ययन करते थे, दान करते थे, गुरु का महत्व जीवन में था, नारियों के प्रति सम्मान था, लेकिन उसके बावजूद भी एक खोज थी आखिर सत्य क्या है। सत्य को समझना, सत्य को जानना, उसके लिए हमेशा बाबा के बुद्धि तरसती रहती थी कि आखिर भी इससे आगे क्या। एक दिन बाबा इस तलाश में बैठे थे और अचानक उन्हें एक, जिसको कहा जाए, साक्षात्कार हुआ। और यह दिव्य साक्षात्कार था विष्णु चतुर्भुज का। और विष्णु चतुर्भुज का यह दिव्य साक्षात्कार देख करके बाबा को इतनी अंदर में जैसे सेटिस्फेक्शन हुआ कि शायद आज मेरी भक्ति का फल मुझे प्राप्त हो रहा है और इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन फिर एक संदेश उनके मुख से सुना, विष्णु चतुर्भुज के मुख से संदेश सुना, अहम चतुर्भुज तत्त्व। वरदान भी था जैसे, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या था मालूम नहीं। फिर धीरे धीरे विष्णु का चित्र जाने के बाद द्वारकाधीश का साक्षात्कार हुआ, श्रीनाथ जी का साक्षात्कार हुआ और जगन्नाथ जी का साक्षात्कार हुआ, जो चारों धाम बद्रीनाथ के साक्षात्कार, ये चारों कृष्ण के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। और हर एक के मुख से यही वरदानी बोल सुनते थे, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। खुशी भी बहुत थी लेकिन समझ में नहीं आया। तो अपने 12वें गुरु को पत्र लिखा बाबा ने कि आपकी कृपा से मुझे आज अपनी भक्ति का फल प्राप्त हुआ कि विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार मैंने किया, लेकिन उनके मुख से जो संदेश था वो समझ नहीं पाया, कृपा करें उसको स्पष्ट करने की। जैसे ही ये पत्र लिखा, गुरु का फौरन पत्र आया कि मेरी कृपा से ये साक्षात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक मुझे अपने जीवन में कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। जब मुझे ही नहीं हुआ तो मैं आपको कैसे करा सकता हूं? कराने वाला वो ऊपर वाला ही है। हो सकता है कि आपकी भक्ति का फल वो दे रहा है और वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। तब बाबा की खोज ये शुरू हुई कि आखिर भी तो फिर ये साक्षात्कार कराने वाला कौन है। उसके ऊपर गहराई से सोचने के लिए बाबा बनारस गए और बनारस में उनके एक मित्र रहते थे। सोचा थोड़ा दिन एकांत में पाई गुजारूंगा और हो सकता है कि इसका स्पष्टीकरण मुझे प्राप्त हो। तो मित्र के यहां गए, बड़ी कोठी थी उनकी। मित्र को कहा कि मैं कुछ बिताना चाहता हूं, किस लिए आया हूं, कुछ नहीं बताया। और गंगा घाट पर जाकर के बैठे, एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष को टेकते हुए देखते हुए सोच रहे थे, फिर भी भगवान क्या कहना चाहते हैं। कि उसी समय पुनः वो उस ध्यान मग्न स्थिति में चले गए और इस समय तीन साक्षात्कार किए। प्रथम साक्षात्कार जो था वो था कि इस संसार के महाविनाश का या महान परिवर्तन का साक्षात्कार। 1935-36 की ये बात मैं सुना रही हूं आपको कि जिस समय एटॉमिक बॉम्ब बने भी नहीं थे, उसका संकल्प भी किसको नहीं आया था। पहला बॉम्ब जो बना और उसका प्रयोग हुआ दूसरे विश्व युद्ध के समय, जब जापान पर फेंका गया 1945 में, तो 1935 में तो उसकी रचना भी नहीं हुई थी। लेकिन बाबा ने देखा कि आकाश से आग के गोले नीचे गिर रहे हैं और जैसे ही धरती को स्पर्श करते सब भस्मीभूत हो रहा है, एक महाविनाश देखा। उसके तुरंत बाद दूसरा, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, इन भेदों के कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खून की नदियां बह रही है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, सिविल वॉर का दृश्य देखा, जैसे बाबा की रूह कांप उठी। और तीसरा दृश्य देखा, इतना खूनी नाहक खेल जो हुआ, इतने लाखों लोग मर रहे हैं। उसके बाद तीसरा दृश्य जो देखा, प्राकृतिक आपदाएं, किस प्रकार कहां जोर का भूकंप आ रहा है सब धरती में सा, क्योंकि इतना जब लोग मरेंगे तो कितनी बदबू हो जाएगी, सफाई कौन करेगा, कोई होगा तो सफाई होगी ना। तो प्राकृतिक आपदाएं देखी, कहीं भूकंप आ रहा है तो भूकंप में धरती में समा रहे हैं, कहीं देखा तो सुनामी उठ रही है और समुद्र के अंदर जा रहे हैं। पांचों तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, सब एक साथ में जैसे परिवर्तन कर रहे हो, सफाई का काम कर रहे हो, ये दृश्य देखा। तब बाबा कैसे निकला, बस करो प्रभु, बस करो, मैं आगे ये दृश्य नहीं देख सकता। ये किसने सुना? तो बाबा जिस मित्र के यहां ठहरे थे, जब रात को 8 बज गए तब भी बाबा घर नहीं पहुंचे, बंगले पर नहीं पहुंचे, तो वो मित्र ने अपने एक जो मददगार था उनको कहा, जरा देखो कहां है और उनको बुला के लाओ, गंगा तट पर ही बैठे होंगे, वो तो सन्यासी आदमी है एक प्रकार से, उनको ढूंढ के लाओ। तो वो जब आए तो देखा कि बाबा झार झार रो रहे थे और कह रहे थे, बस करो प्रभु, बस करो, अब मैं आगे नहीं देख सकता हूं, उसके बदले तो आपका कोई मोहिनी स्वरूप मुझे दिखाइए। तब एक आवाज आकाशवाणी के रूप में सुनाई दी, निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होना है और उसके बाद ऐसी सृष्टि तुम्हें बनानी है। उसके बाद जो दृश्य देखा नष्टी का, जहां सतो प्रधान प्रकृति, बहुत सुंदर स्वर्गीय दृश्य देखा और ऊपर से पवित्र आत्माएं नीचे उतर रही है और कोई न कोई देव या देवी का स्वरूप धारण कर रही है, राधे हैं, कृष्ण हैं, नारायण है, लक्ष्मी है, ये सारे देवी देवताओं का दृश्य देखा। और जो आवाज सुनाई दिया कि निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश के बाद, इस महापरिवर्तन के बाद ऐसी सृष्टि तुम्हें बनानी है। तो एक तरफ तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर अंदर से आया, ऐसी दुनिया मैं तो कैसे बना सकता हूं, ध्यान मग्न स्थिति में ही थे। वो जो बुलाने आया था बाबा को, वो भी बाजू में बैठ गया, देखने लगा कि पता नहीं क्या देख रहे हैं। उनको हिलाने का मन नहीं किया कि मैं बाबा को हिलाऊं, पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हैं, एक तरफ रो रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर जब बाबा ने नेत्र खोले, उस ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए तो उस सेवादार को देखा तो कहा, आपको बुलाया जा रहा है, इंतजार हो रहा है, आप चलिए। लगभग 8:30 के आसपास आए, लेकिन वो दृश्य जो बाबा ने देखे थे उसके बाद एक बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा के जीवन में आई, ऐसी वैराग्य के इतना निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होना है। और फिर अनेक प्रश्न थे कि ऐसी दुनिया मैं तो कैसे बना सकता हूं, मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है इसको बनाने का। आकर के कुछ समय के बाद वहां से बाबा कलकत्ता गए, कलकत्ता का कारोबार जो चला रहे थे उनके पार्टनर चला रहे थे, पार्टनर बहुत ही वफादार थे बाबा के, लेकिन जब बाबा वहां पहुंचे तो बाबा ने पार्टनर से कहा कि मैं अभी ये धंधा समेटना चाहता हूं, आप मेरा हिसाब कर लो, जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो मुझे दे दो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और वहां से रवाना हो गए बाबा हैदराबाद सिंध, क्योंकि बाबा के पास टेलीग्राम आया कि उनका चाचा जो है बहुत बीमार है, उनकी अंतिम इच्छा है कि वो बाबा को देखे। तो इसीलिए बाबा ने पार्टनर के ऊपर सब छोड़ा, कहा आप जो करेंगे मुझे विश्वास है और मैं जा रहा हूं। जैसे ही वहां पहुंचे तो चाचा ने तो शरीर छोड़ दिया था, बॉडी रखी हुई थी वहां पर, क्योंकि चाचा को कोई अपनी संतान नहीं थी। पहले तो किराने के बिजनेस में थे, लेकिन बाद में फिर हीरे जवाहरत में ही आ गए, तो उनकी काफी संपत्ति थी। तो वो चाहते थे कि सारी संपत्ति बाबा को दे करके, तो विल लिख करके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो उसका सदुपयोग ही करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए सारी संपत्ति बाबा के हवाले उन्होंने किया। बाबा ने जब देखा बॉडी रखी हुई थी, तो उस समय जो है बाबा को आत्मा का साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ने से पहले आत्मा किस तरह से शरीर से निकलती है। तो उस समय देखा कि आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में है, शरीर छोड़ने से पहले वो सारे शरीर में पैरों के अंगूठे तक जाती है और एक एक इंद्रियों की विदाई लेती है, एक एक इंद्रिय की विदाई लेते हुए फिर वापस यहां आती है और निकल जाती है। ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा। इसीलिए दिखाते हैं कि कोई भी इंसान जब नॉर्मल मृत्यु उसकी होती है तो सबसे पहले उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा विदाई लेती है एक एक इंद्रिय से, वैसे वैसे वो इंद्रियां शीतल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है और फिर यहां आकर के निकल जाती है। कभी आंखों से निकलती है, मुख से निकलती है, कहीं से भी निकलती है। ये जो दृश्य उन्होंने देखा, तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि इसका मतलब मैं भी आत्मा हूं। ये शरीर तो मेरा चोला है, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाश। आत्म ज्ञान का बोध हुआ सबसे पहला। गीता में सुनते तो थे ही, लेकिन जब यह साक्षात्कार हुआ, आत्मा का बोध और क्लियर हो गया। चाचा के शरीर को विदाई देने के बाद यही मनन चिंतन में लगे रहे, मैं भी आत्मा हूं। यशोदा उनकी पत्नी का नाम था, यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, बड़े बेटे का नाम नारायण था, नारायण भी आत्मा है। एक एक बच्चे का नाम लेते हुए ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। जैसे आत्मा का रियलाइजेशन इतना गहराई से हो रहा था, जिसको भी देखते थे उसके ब्रुकुटी के मध्य में चमकते हुए वो सितारे को देखते थे, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। आत्मचिंतन आरंभ हो गया। उसके बाद उनको लगा कि अभी जो बंबई का बिजनेस है वो बड़े बेटे को सौंप करके मैं वहां से भी निवृत्त हो जाऊं। तो बंबई गए और बंबई में जैसे ही उनका मकान था, बबुलनाथ मंदिर के एकदम सामने आज भी है, और उस मकान का नाम है सदगुरु सदन। आज भी वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा, सदगुरु सदन। उसके तीसरे माले पर बाबा का निवास था। जैसे कहा कि जहां जाते थे पंडित जी आते थे, गीता का पाठ करते थे। बबुलनाथ मंदिर से पंडित जी आते थे, गीता का पाठ करते थे, तो सारे परिवार का ये नियम था कि हरेक को उस गीता के पाठ में बैठना ही है, कंपलसरी है, ये डिसिप्लिन थी। तो इसीलिए सभी गीता के पाठ में बैठे हुए थे, पंडित जी सुना रहे थे कि अचानक पिताजी को एक खींच हुई और उनको लगा जैसे कोई बुला रहा है मुझे। और उस सत्संग से पहली बार जिंदगी में उठे और उठ करके अपने कमरे में गए। उसके बड़े बेटे की बहू को लगा बाबा कभी उठते नहीं है, आज पता नहीं तबीयत ठीक है नहीं है। वो पीछे पीछे गए पूछने के लिए चाहिए, तो देखा कि बाबा उस समय अपने कमरे में पलंग पर अर्ध पद्मासन में बैठे थे, और अर्ध पद्मासन में बैठे थे और आंखें बंद थी, एक ध्यान मुद्रा में थे। वो बड़े बेटे की बहू जिसका नाम राधिका था वो जो सामने बैठ गई, और सामने बैठ करके उसने सोचा पता नहीं अब क्या होगा, ध्यान में है, कैसे मैं हिलाऊं, कैसे मैं उनको पूछूं। लेकिन थोड़ी ही देर में देखा कि बाबा के नेत्र खुलने लगे, और जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो चारों ओर इतना प्रकाश प्रकाश फैल गया। बाबा के नेत्र से ऐसा प्रकाश निकला, लाल सुनहरा प्रकाश जो सारे कमरे को प्रकाशित कर दिया। और उसके बाद बाबा के मुख से तीन महावाक्य सुनाई दिए, और वो तीन महावाक्य थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये तीन महावाक्य में परमात्मा ने अपना संपूर्ण परिचय, जो आज सवेरे मुझे 1.5 घंटा लगा, ये तीन महावाक्य में परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं निजानंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो ये तीन महावाक्य में सारा परिचय दे करके फिर बाबा के नेत्र बंद हुए और वो लाइट चली गई। बाबा जैसे अपने होश में आए तो एकदम से बाबा ने कहा कहां गई वो लाइट, कहां गई वो लाइट। पूछा गया कि बाबा आपने क्या देखा, तो बाबा ने कहा एक बहुत तेजस्वी लाइट थी, एक लाइट थी, वो लाइट मेरे नजदीक आई और ऐसा लगा मेरे शरीर में आई। और उसके बाद कुछ महावाक्य शायद उच्चारण किए और फिर चली गई। कहां गई वो लाइट, कहां गई वो लाइट। तब राधिका सुनाती है अपने अनुभव में कि वो पहला अवतरण मैंने जब देखा विश्वास नहीं हुआ और लगा कि बहुत जन्म के पुण्य का उदय हुआ हो, तब ऐसा दिव्य अनुभव की साक्षी में रही हूं। और इस तरह से परमात्मा का दिव्य अवतरण पहली बार हुआ बंबई में, भारत भूमि पर, क्योंकि भारत भूमि अविनाशी भूमि है, परमात्मा की अवतरण भूमि है, और ऐसी मायावी नगरी में हुई, क्योंकि बंबई को कहा ही जाता है मायावी नगरी, तो मायावी नगरी उस कीचड़ के अंदर उस कमल को खिलाया। और उसके बाद सारा कारोबार बड़े बच्चे को सौंप करके बाबा वहां से निकल गए, वापस हैदराबाद सिंध में गए। और वहां जाने के बाद यही सोचते थे कि वो लाइट कौन है, वो क्या कराना चाहती है, क्या करना है मुझे, कुछ भी स्पष्ट नहीं। महाविनाश देखा तो वैराग्य भी है, इतना बड़ा महाविनाश होगा, ये भगवान क्या कहना चाहते हैं, ऐसे अनेक सवाल मन के अंदर थे जिसके जवाब बाबा को कोई देने वाला नहीं था। उसके बाद बाबा की वृत्ति हद से निकलती जा रही थी, अपने परिवार से निकलती जा रही थी और जैसे सारा विश्व मेरा परिवार है, ये सारे विश्व के लिए मुझे कुछ कार्य करने के लिए भगवान निमित्त बना रहा है, तो एक बेहद की वृत्ति बाबा की जागृत हो रही थी। और फिर बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल खोला, सोचा कि अगर ऐसी दुनिया बनानी है, बड़ों को कुछ कहने जाएंगे, कोई अपनी मानसिकता को परिवर्तन नहीं करेंगे, छोटे बच्चों के अंदर जैसा बीज बोएंगे वैसे उनके अंदर संस्कारों को हम भर सकते हैं। तो बाबा सत्संग चलाने लगे हैदराबाद सिंध में, धीरे धीरे सत्संग में लोग आते गए, और आते गए लोग ध्यान मग्न हो जाते थे, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार, किसी को राधे कृष्ण दिखाई देते थे, स्वर्ग दिखाई देता था, किसी को महाविनाश दिखाई देता था। तो उस समय के पेपरों में भी निकला, पैनी पैनी में साक्षात्कार हो रहा है, ब्रह्मा बाबा कोई जादूगर है, दादा लेखराज कोई जादूगर है जो जादू दिखाता है और पाई पाई पैसे में साक्षात्कार कराता है। जबकि बाबा तो जानता ही नहीं था कि किसको क्या, और जैसे उनके 12वें गुरु ने लिखा था कि साक्षात्कार कराना ये चाबी कोई भी इंसान के पास नहीं होती है, ये ऊपर वाले की पास ही रहती है, वो जब चाहे तभी करा सकते हैं, कोई इंसान किसी को साक्षात्कार नहीं करा सकता है। जादू दिखा सकता है लेकिन साक्षात्कार नहीं करा सकता है, ये किसी की ताकत नहीं है, ये सिद्धि किसी के पास है ही नहीं। काफी धीरे धीरे आवाज फैलने लगा, तो बाबा ने जब ये देखा कि काफी आवाज फैल रहा है, क्यों नहीं मैं एक बोर्डिंग स्कूल खोलूं। बाबा ने मकान बनाया ही था कराची में, एक स्कूल खोलने का संकल्प पहले से ही बाबा का था, तो स्कूल का बिल्डिंग तैयार हो चुका था। तो बाबा हैदराबाद सिंध से कराची आ गए, और जब कराची आ गए तो बाबा का अलग बंगला था, और ये बोर्डिंग स्कूल में के जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे उन्हें दुनियावी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाएगी। कई बच्चे आए स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन बाबा का ये नियम बन गया कि जो भी स्कूल में पढ़ना चाहता है माता पिता की लिखित में चिट्ठी चाहिए, स्वीकृति चाहिए, जिसको स्वीकृति मिलेगी वही इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेंगे। करीबन 350 बच्चे को स्वीकृति दी गई, माता पिता से स्वीकृति मिली, और वो उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। और ये सभी बच्चियां थी अधिकतर 10 साल 12 साल 14 साल के बीच की बच्चियां थी, बाबा उस समय 60 साल के बुजुर्ग थे। ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स को बाबा ने नियुक्त किया अलग अलग सब्जेक्ट के, और आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए भी किसी को नियुक्त किया, जिसको बाबा ने नाम दिया था ओम राधे। 14 साल की बच्ची थी, और ये सभी बच्चियां के जो नाम थे उनके आगे ओम लिखा जाता था, ओम राधे, ओम रामा, ओम गोपी, ओम ओम शब्द से, क्योंकि ओम मंडली के रूप में ओम की ध्वनि होती थी, और ओम की ध्वनि के साथ कई लोग साक्षात्कार में भी जाते थे, और ओम के नाम से ही, ओम मंडली के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। तो इसीलिए कि वहां ओम की ध्वनि लगाई जाती है, तो इसीलिए सभी के नाम के आगे ओम शब्द लिखा जाता था। लेकिन जैसे कहा कि उस समय बच्चे पढ़ते थे तो थोड़ा विरोध भी होने लगा समाज के अंदर कि कौन से स्कूल में आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, बाबा को तो वो संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार का सिंचन करना था। ताकि ये नींव बने आने वाले भविष्य के लिए। और परमात्मा का भी आदेश था कि जब तक भारत की माताओं बहनों का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उस समय माताएं बहनें पर्दे में रहती थी, पर्दा सिस्टम थी, तो उनको पर्दे से बाहर निकालो, उनके ऊपर ज्ञान का कलश रखा जाए। माता जब तक प्रथम गुरु नहीं बनेगी तब तक संसार का उद्धार नहीं हो सकता है। मां ही बच्चे को अच्छे संस्कारों का सिंचन कर सकती है, उसके अंदर सहनशीलता होती है, मधुरता होती है, धैर्यता होती है, इन संस्कारों के आधार से ही आध्यात्मिक संस्कारों का सिंचन होता है। नारी तु नारायणी, नारियों की महिमा शास्त्र में भी बहुत की गई है, लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया, उनको उस दासित्व से मुक्त करना था। तो परमात्मा का ये आदेश मिला के नारियों को जागृत करो, और इस तरह से ये बोर्डिंग स्कूल में ये बहनें पढ़ने लगी। जैसे कहा, ओम राधे के ऊपर विशेष ये कलश रखा गया, जो 14 साल की आयु में बाबा के पास आए थे, और उन्होंने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कमान संभाली। प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारीज की मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनको हम कहते हैं, जिनकी जिह्वा पर सरस्वती इस तरह से विराजमान थी, जब वो प्रवचन करते थे तो साक्षात सरस्वती बोल रही हो ऐसा आभास होता था। तो इसीलिए उनको हर एक मां के स्वरूप में देखते थे, जगदम्बा के रूप में देखते थे, क्योंकि निर्भय शक्ति शेरनी के तरह जब कोर्ट में केस चला तो शेरनी शक्ति की तरह उसकी गर्जना थी। इसलिए बाबा ने कहा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, ये टाइटल उनको तब दिया गया। और इस तरह से फिर पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन हुआ तो जब तक आदेश न मिले कहां जाना है तो कैसे जा सकते हैं, तो वहीं रहे ये बोर्डिंग स्कूल में। चारों तरफ से दरवाजा बंद करके कलेक्टर ने बताया कि आपके पास 350 बच्चे हैं, ये बच्चों को खाना पीना दूध आदि सब हम वहां पहुंचा देंगे, लेकिन आप इनको बाहर नहीं निकालना, बाहर बहुत खून खराबा चल रहा है। और इसीलिए सबके माँ बाप तो बच्चों को छोड़ करके चले गए, कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले, कोई अपने बच्चों को लेने तक नहीं आया। बाबा के पास ये 350 बच्चे 1936 से लेकर 1950 तक 14 साल की ये तपस्या रही। बाबा का बंगला अलग रहता था, और कलेक्टर ने मना किया था बाबा को भी, कल उस बंगले पर जाना नहीं है आपको, आप अलग ही रहो, और उन बच्चों को हम देखरेख करेंगे, उनको सब कुछ पहुंचा देंगे। तो मातेश्वरी जी के निर्देशन में सारे बच्चे रहते थे, तपस्या करते थे, और कुछ नहीं, वहां 14 साल तपस्या किया 1936-37 से लेकर 1950 तक, जब चारों ओर वातावरण शांत हो गया, तब बाबा को ये संदेश मिला, परमात्मा द्वारा आदेश मिला, भारत अविनाशी भूमि है, आपको भारत जाना है, और भारत से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलाना है। कहां जाना है, तो परमात्मा का आदेश यही था, एक पहाड़ी पर जाना है, जिस पहाड़ी पर पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी, उस पहाड़ी पर जाना है। अब ये तो पता ही नहीं था कि इस पहाड़ी पर पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई, और वो पहाड़ी कौन सी है। तो बाबा ने कुछ मुख्य भाई बहने, 2 भाई और 3 बहने, 5 का ग्रुप बना करके उनको भारत भेजा कि पहले वो पहाड़ी ढूंढ के आओ, तब हम ये सारे बच्चों को लेकर के आएंगे उधर। काफी पहाड़ियां घूमे, जब ऐसी कोई पहाड़ी दिखाई नहीं दी हरिद्वार के तरफ, उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर, सब जगह गए। पहाड़ी कौन सी है जहां पर पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी और 350 का रहने का बंदोबस्त करना है। तो उस समय फिर जब बॉम्बे गए वापस, तो बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल के जो लोग थे वो भी वहां से पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उनमें से किसी की पहचान थी तो उनके पास गए। तो उनके घर में स्वामी गंगेश्वरानंद की कथा चल रही थी या प्रवचन चल रहा था, प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बाद स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने पूछा, आप तो वही हो ना दादा लेखराज के साथ जो ओम मंडली में थे, वही हो? जी, बहनों ने कहा, हम वही है। क्या हुआ उनका? तो बताया कि हमको आदेश मिला है भारत आने का, अब 350 को लेकर आना है। आदेश में सिर्फ ये कहा गया पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी, उस पहाड़ी पर जाना है। वो पहाड़ी कौन सी हमें पता नहीं है। तब स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने कहा, माउंट आबू ही वो पहाड़ी है। आबू नाम अर्बुदा देवी से निकला है, जो माँ सरस्वती का दूसरा नाम है, और शास्त्रों में ये बताया गया है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान इस भूमि पर दिया है, आबू की भूमि पर दिया है, और वहां पर ही पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई है। आबू में कई गुफाओं में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, शायद वही भूमि के बारे में संकेत मिला है, आप वहां जाइए। उन्होंने ये एक डायरेक्शन दे दिया। यहां जब आए तो यहां देखा कि राजस्थान के बड़े बड़े राजाओं की कोठी ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। तो भरतपुर राजा की कोठी थी, तो उसमें निवास करने का बाबा को पत्र लिखा कि ऐसी ये पहाड़ी हमें मिली है और यहाँ राजाओं की कोठी है और हमें ये कोठी मिल सकती है सहजता से, जहां 350 का बंदोबस्त आराम से हो सकता है। तो बाबा ने कहा वही पहाड़ी है, और इसलिए जो है फिर वहां के कलेक्टर को कहा कि हमें आदेश हुआ है भारत जाने का, तो हमें एक जहाज चाहिए, समुद्री जहाज के माध्यम से हम ओखा बंदर जाएंगे और वहां से उस पहाड़ी पर जाना है। वहां के कलेक्टर के आंखों में आंसू थे और कहा, आप लोग इतने पाक लोग हैं, अगर आप लोग इस भूमि को छोड़ के चले गए तो ये भूमि नापाक हो जाएगी। मैं निवेदन करता हूं, आप प्लीज ये भूमि को छोड़ के नहीं जाइए, हमने आपको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होने दिया है। बाबा ने कहा, आपकी बात तो सही है, 14 साल की तपस्या हमारी थी, ये तपस्या हमारी पूरी हुई है और अब हमें आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है, इसीलिए ये परमात्मा का संदेश है जो हमें पालन करना है। तब कलेक्टर ने कहा, यहाँ एक सुई भी आपकी नहीं रहेगी, सब कुछ आपका ले जाइए, बच्चों को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो, हर चीज उस जहाज के ऊपर चढ़ाया और चढ़ा करके विदा किया वो कलेक्टर ने आंसुओं के साथ। और फिर ओखा बंदर पहुंच करके ओखा बंदर से ट्रेन लिया और उस ट्रेन से माउंट आबू की पहाड़ी पर आए। माउंट आबू की पहाड़ी बहुत सात्विक पहाड़ी मानी जाती है। मुझे याद है कि मैं जब इस पहाड़ी पर आई, माउंट आबू में, जब मैं 1992 में जब रहने के लिए समर्पित होकर के यहाँ रहने आई, उस समय तक और आज तक भी माउंट आबू में कोई भी फिल्म थिएटर नहीं है, मनुष्य की मनोवृत्ति को खराब करने वाला कोई साधन नहीं है, यहाँ थिएटर ही नहीं है। नीचे आबू रोड में मिलेगा, माउंट पर नहीं है। दूसरा के उस साल तक वहां कोई बियर बार नहीं होती थी, ये तो आजकल 10, 15, 20 सालों में ये बियर बार होटलों में खुलने लगी और बियर बार बिकने लगी। बाकी उस समय तक कोई बियर बार यहां नहीं होती थी। इतनी सात्विक भूमि जब देखी तो सचमुच ये लगा कि जो कहा गया है शास्त्रों में कि पांडवों की अंतिम तपस्या यहां पूरी हुई थी और यहां पर ही हमें निवास करना है। ब्रिज कोठी जो भरतपुर राजा की कोठी थी, आप माउंट आबू चढ़ेंगे तो एंट्रेंस में ही है, वहां पर ऊपर में आपको दिखाई देंगी, बहुत सुंदर वो कोठी है। तो उस कोठी में 350 लोगों का बंदोबस्त किया गया, वहां रहे। लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि 14 साल 350 को ब्रह्मा बाबा की जो इनकम थी उसी पर पालना, कितनी इनकम होगी उस जमाने में भी। लेकिन जब यहां आए तो समुद्री स्थान पर रहते थे और माउंट पर आए तो नेचुरल है यहां का वेदर एकदम ठंडा, ठंडी में इतनी ठंडी, इन लोगों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं, समुद्र के तराई एरिया में रहे थे, वहां तो ठंडी होती नहीं थी और यहां पर इतनी ठंडी। तो धीरे धीरे जो पैसे थे बाबा के सारे समाप्त हुए और जिन्होंने मदद करने के लिए वायदा किया था कि आप आ जाओ हम मदद करेंगे आपको धन से, उन्होंने भी हाथ खींच लिया कि कोई बात नहीं, ये संस्था टूटनी चाहिए, कैसे भी करके खत्म होनी चाहिए। इस तरह से कई विघ्न डाले, एक भी पैसा उनको देना नहीं है। उसके बाद जो बेगरी पार्ट आरंभ हुआ, हैदराबाद सिंध में तो काफी परीक्षाएं आई। बाबा को मारने के लिए एक नामचीन डाकू को नियुक्त किया गया और वहां के लोगों ने कहा जितना मुंह मांगे पैसा मांगेंगे, इस व्यक्ति को खत्म कर दो बस। वो मारने के लिए आया भी और मारने के लिए आया एक सिख था, अपने तलवार लेकर के आया था मारने के लिए। दोपहर के समय में जब सब आराम में होते हैं तो बाबा के पास वो गया कि मुझे कुछ प्रश्न पूछना है आपसे। प्रश्न पूछने के बहाने से वहां गया और फिर जैसे ही मौका देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली बाबा को मारने के लिए, कि उसी समय उनको बाबा में गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ। उसने कदम पीछे हटाए कि मैं अपने इष्ट को कैसे मार सकता हूं। जैसे कदम पीछे हटाए फिर बाबा का स्वरूप देखा, फिर तलवार निकाली, मेरा ब्रह्म है। दोबारा जब तलवार निकाली मारने के लिए, फिर उन्हें पुनः गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ। उसने वहीं तलवार को समर्पित कर दिया और कहा बाबा मैं भी लालच में आ गया था, मुझे मारने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अभी आपको मार नहीं सकता हूं क्योंकि आप मेरे इष्ट हो, और करके वहां से चला गया। कहां गया किसी को पता ही नहीं चला। तब वहां के लोगों को लगा कि भाई उसने तो मारा नहीं, तो कैसे करके उनको मारना तो चाहिए, खत्म तो होना चाहिए। तो कहा इनका सत्संग सुबह सुबह में चलता है, 7 बजे चलता है, तो सब सत्संग में बैठे हो उसी समय दरवाजा बाहर से बंद कर लो और केरोसिन डाल करके जला दो इनको, भले अपने रिश्तेदार भी जल जाए, ऐसे रिश्तेदार भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन जला दो। तो सत्संग रोज चलता था सुबह सुबह, लेकिन उसी दिन सुबह में परमात्मा के आदेश के हिसाब से ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को कहा आज समुद्र किनारे चलते हैं, वहां सत्संग करेंगे। और समुद्र किनारे चले गए सुबह 5 बजे में, निकल गए सभी। एक तरफ वो समुद्र की लहरें, एक तरफ ज्ञान सागर परमात्मा के लहरें, ज्ञान की लहरें, और सब बैठ करके आराम से सत्संग सुन रहे थे। बाबा सुनाया जा रहा था, यहां वो आए कि इनका सत्संग चालू हो गया और वो मकान का नाम जो था लखी भवन था। तो सोचा अभी इनको सब अंदर बैठ गए होंगे तो बाहर से ताला लगा दिया कि कोई बाहर निकल न सके। और ताला लगा करके चारों ओर पेट्रोल और केरोसिन डाल करके आग लगा दी। लखी भवन, जिसका नाम शास्त्र में आता है कि पांडवों को लाखा भवन में जलाया गया, कौरवों ने जलाया, वो लाखा भवन नहीं था, लखी भवन था, जिसमें पांडव छोटे छोटे बच्चों को जलाने का प्लान बनाया था। 7:30 बजे तक जब प्रवचन पूरा हुआ तो सब समुद्र किनारे से वापस आए तो लाइन में खड़े थे सब। वो आश्चर्य हो गए, अंदर से बाहर निकले कैसे, जल रहा है, कोई आवाज नहीं, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं, कुछ नहीं, इतनी शांति कैसे हो सकती, और ये लोग समुद्र किनारे से वापस आए। बाबा ने सबको इशारा किया, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, शांत रहना है। तो इस तरह से पिकेटिंग हुई, सारे बच्चों ने पिकेटिंग किया, एक विद्रोह शांति के आधार से किया। इस तरह से कई घटनाएं हुई जिसका वर्णन शास्त्रों में है, अलग ढंग से है, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जब होने के बाद केस भी किए, सब कुछ कि भाई वारंट निकाले गए, जिन बच्चियों के माँ बाप से अगर पत्र नहीं था, स्वीकृति पत्र, तो उनको वारंट निकाले गए, लेकिन ओम राधे ने जो गर्जना की उसके आधार से तो कोई जेल में भी नहीं गए, हरेक को वो स्वतंत्रता थी, और इस तरह से सभी सुरक्षित होकर के माउंट आबू आए। माउंट आबू में बेगरी पार्ट चला, और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, करीबन 1.5 साल ये बेगरी पार्ट चला, कि जब घर में अनाज का दाना नहीं था, खाने का कुछ था नहीं, और 350 का पेट भरना है, कितना टेंशन हो जाए, 4 लोगों का पेट भरना हो तो भी कितना टेंशन हो जाए, और 350 का भरना हो तो क्या होगा। लेकिन जब भंडारी आती थी, भंडारा जो चलाने वाली बहन आती थी, जो खाना बनाती थी, बाबा के पास आकर कहती थी, बाबा अनाज का दाना नहीं है और 4 आना नहीं है, 350 को क्या खिलाएंगे। बाबा कहते थे, बच्ची तुम एक काम करो, 10:30 बजे आना। वो सोचती थी, अभी नहीं है, 10:30 बजे कहां से निकालेंगे। वो 10:30 में 5 मिनट पहले आ जाती थी। बाबा घड़ी को देखते थे, अच्छा बच्ची जल्दी आ गई, बैठो, उसको बिठाते थे। ठीक 10:30 बजे पोस्टमैन आता था, उसमें 500 रुपया आते थे, कभी 700 रुपया आते थे। बाबा वही 500 रुपया दे के कहते थे, बाजरे का आटा ले आओ, ढोडा और छाछ सभी को पिला दो। बाबा को एक समय पूछा, जब ये बेगरी पार्ट पूरा हुआ, कि बाबा ये 500 रुपया 700 रुपया जो हर हफ्ते आते थे वो कहां से आते थे, कौन भेजता था। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए यही उत्तर दिया कि बच्चे, रावण की कैद में एक मंदोदरी है जो राम की मदद कर रही है छुप छुप करके। और सचमुच वो बहन जो थी रावण की कैद में थी, चारों ओर उसके ऊपर इतना पहरा रहता था कि वो किसी भी तरह से पैसा न भेज सके, लेकिन फिर भी वो बचा बचा करके कैसे 500 रुपया भेज देती थी छुप छुप करके, और कैसे पहुंच भी जाता था। तो कहा, रावण की कैद में एक मंदोदरी है जो छुप छुप के राम की मदद कर रही है, और हर हफ्ते 500 रुपया आ जाता था, और 350 बच्चों का एक सप्ताह का भोजन हो जाता था। इस तरह से समय इन्होंने बिताया। उसके बाद तो हर एक माता पिता को जब पता चला कि हमारे बच्चे सुरक्षित आ गए हैं, तब माता पिता ने कहा, बाबा को पत्र लिखा कि हमारे बच्चों से हम मिलना चाहते हैं, आप कृपा करके थोड़े समय के लिए हमारे पास भेज दीजिए। तो बाबा ने कहा, जिसके भी माँ बाप के पास जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, खुली छुट्टी दिया बाबा ने। लेकिन जब वो घर में गए, अब जिन्होंने 14 साल सात्विक जीवन जिया हो, तो घर में जब गए तो अशुद्ध भोजन बनता था, सिंध कम्युनिटी में तो आप सभी वाकिफ है कि किस तरह से कई जगह तामसिक भोजन भी बनता हो किचन में, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो दो चार दिन रहने के बाद उन्होंने कहा हम तो बाबा के पास जाते हैं वापस। तब वो लेकर के आए बाबा के पास और कहा कि बाबा हम सत्संग सुनना चाहते हैं, इन बच्चों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आप कृपा करके उनको हमारे पास छोड़ दीजिए, वो हमें ज्ञान सुनाए। बाबा ने कहा ठीक है ज्ञान तो सुनाए लेकिन आपके घर में नहीं, उनके लिए अलग स्थान लिया जाए, उस स्थान में वो बच्चियां रहेगी और वहां रह करके आप जो भी जाना चाहे, हर एक के लिए स्वतंत्रता हो कि कोई भी जाति धर्म वाला वहां जा करके ज्ञान अमृत का पान कर सकता है। तो इसी तरह से पहले पहले जो सेंटर खुले बंबई, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर और लखनऊ, ये 5 सेंटर खुले थे सबसे पहले, जहां पर ये सिंधी कम्युनिटी के भाई रहते थे, भाई बहने रहते थे। और फिर ये 5 सेंटर जैसे जैसे खुले सबको ज्ञान सुनाने लगे। और तब तक माउंट आबू में 1969 में बाबा का साकार का जो पाठ था वो पूरा हुआ और अव्यक्त हुए। आप सभी जाएंगे माउंट आबू में जो पांडव भवन का जो असली स्थान है, जो बाबा की कर्म भूमि रही है, और वहां पर 1950 से लेकर 1969 तक बाबा का कर्म क्षेत्र वही रहा। बाबा बाहर कहीं जाते नहीं थे इतना, बहुत बहुत तो कभी बम्बई जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, और कहीं इतना नहीं जाते थे बाबा। 18 जनवरी 1969 पर बाबा ने अपने साकार देह को त्याग किया और बाबा को पता था 93 इयर्स की आयु थी बाबा की। और उस समय जैसे ही रात्रि के समय बाबा ने क्लास कराया सभी बच्चों को, और क्लास कराने के बाद फिर कमरे में आए, दादी प्रकाशमणि जी वहीं थे और उनके हाथ में हाथ दे करके जैसे पूरी अपनी शक्ति ट्रांसफर कर दी हो बाबा ने, और ट्रांसफर करके उनको ये कार्यभार सौंपा और खुद अव्यक्त हो गए। इस तरह से पांडव भवन में हम यही कहते हैं कि बाबा के ये 4 स्थान हैं जो 4 धाम की तरह है। शांति स्थान जहां बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था, बाबा का कमरा जिस कमरे में बाबा रहते थे उसको अभी तो एक्सटेंड किया, आधा ही था उस समय में, और उसी छोटे से कमरे में बाबा रहते थे। बाबा की झोपड़ी है जहां बाबा बैठकर सभी बच्चों को पत्र लिखते थे, प्रेरणा के शब्द लिखते थे, और जो हिस्ट्री हॉल है जहां बाबा रोज सत्संग करते थे। ये 4 धाम माने जाते हैं बाबा के। और फिर दादी प्रकाशमणि जी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर संभाली 2nd एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, और 1969 से लेकर 2007 तक दादी जी जो विस्तार किया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का देश विदेश के अंदर, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। 25 अगस्त दादी जी का स्मृति दिन है, आप सभी नीचे आएंगे और दादी जी के स्मृति दिन पर भी आप अवश्य भाग लेंगे। उसके बाद दादी जानकी जी और हृदय मोहिनी दादी जी ये मुख्य प्रशासिका के रूप में रहे, जिन्होंने सारा विस्तार को संभाला। दादी जानकी तब तक लंदन में थे, विदेश का सारा कारोबार प्रकाशमणि दादी भारत का और विदेश में भी आते जाते रहते थे, लेकिन जानकी दादी जी जो 104 साल की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग किया और विदेश का मुख्य कारोबार उन्होंने संभाला था 1972 से लेकर के 2007 तक, उसके बाद भारत में ही मुख्य रहने लगे। और 2000 20 पर, जब कोरोना आरंभ हुआ तो दादी जी का ये था कि मेरे अंतिम समय में भी मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे जाऊं यहां किसी को बुलाना नहीं। और सचमुच उस समय कोरोना काल था, कोई आ ही नहीं सका, ना कोई फूल जो बगीचे में थे वही फूल, कोई जो इनकी इच्छा थी कि मेरे पीछे कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। मेरे अंतिम देह के उसके संस्कार के समय वैसा ही रहा। और एक साल के बाद हृदय मोहिनी दादी जी ने भी अपने साकार देह को त्याग किया। सारे विश्व के अंदर, जैसे बताया गया कि 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी का ये केंद्र है, हमें ये गर्व होता है कहते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का राज्य था उस समय के लिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि उसका राज्य इस तरह से सारे विश्व के अंदर फैला हुआ था कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। लेकिन आज हमें कहते हुए गर्व होता है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं सूर्य उदय ही है। इस तरह से सेंटर सारे पांचों खंडों में फैले हुए हैं। एक अनोखा ऐसा विश्वविद्यालय है, एक ऐसा यज्ञ है जहां हर कोई अपने बुराइयों की आहुति दे करके अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं। और हमारा स्लोगन यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक हम स्वयं का परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तब हम अपने जीवन के अंदर की जो बुराइयां हैं उसको इस ज्ञान अग्नि में, योगाग्नि में स्वाहा करते हैं और परिवर्तन करके अपने जीवन को, जीवन का शुद्धिकरण करते हैं। इस योगी जीवन के लिए मुख्य चार स्तंभ बताए गए हैं। सत्संग, प्रतिदिन सत्संग करना है, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना और दिव्य गुणों की धारणा, ये चार हमारे मुख्य स्तंभ हैं। जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ता है, चाहे वो अपने गृहस्थ में रहता हो, चाहे वो समर्पित हो, उसके लिए ये चारों ही स्तंभ महत्व रखता है और इसीलिए उसका पालन करना अनिवार्य है हर एक के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान, कि जहां आत्मा का यथार्थ ज्ञान, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, समय का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, मुख्य रूप से चार सब्जेक्ट हमारे होते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। जैसे कोई भी विद्यालय के अंदर सब्जेक्ट होते हैं तो चार सब्जेक्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, ध्यान, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और चौथा है ईश्वरीय सेवा, समाज की सेवा, चारों ओर ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से, चाहे हॉस्पिटल के द्वारा सेवा हो रही हो, चाहे अभी दादी प्रकाशमणि जी के जो स्मृति दिन है 25 अगस्त, तो आज 23 और 24 अगस्त सारे भारत भर में जितने भी केंद्र है वहां से 1,00,000 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है और विभिन्न हॉस्पिटल्स में ये ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। विचार तो यही है कि ये 2 दिन में इतना ब्लड इकट्ठा करे ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन जाए कि इतना 2 दिन के अंदर इतना यूनिट ब्लड आज तक कभी हुआ नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय या संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जुड़ी हुई है, सदस्य है। और प्रकाशमणि दादी जी को 5 पीस मैसेंजर अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा पीस मैसेंजर अवार्ड जो होता है यूनाइटेड नेशंस का, वो दादी जी को 1986 में प्राप्त हुआ, पांचों ही खंडों के हिसाब से, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ने जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स यूएन के साथ मिलकर के जो चलाए हैं, एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ जो 1985 में भारत भर के अंदर 13 स्थानों से युवा पद यात्राएं निकली थी, दूसरा प्रोजेक्ट जो था 1986 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील के सारे विश्व के अंदर एक मिलियन से भी अधिक, एक बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील इकट्ठी की गई, तीसरा प्रोजेक्ट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, चौथा प्रोजेक्ट शेयरिंग आवर वैल्यूज फॉर अ बेटर वर्ल्ड, पांचवा प्रोजेक्ट कल्चर ऑफ पीस मैनिफेस्टो और लास्ट प्रोजेक्ट जस्ट अ मिनट, सिर्फ एक मिनट दो आपकी, इस विश्व कल्याण के लिए, विश्व में शुभ वाइब्रेशंस फैलाने के लिए। तो ऐसे विश्व कल्याण के कई प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर किए गए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर कंसर्न है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत करीबन 20 प्रभाग बने हुए हैं, धार्मिक प्रभाग जो ये कार्य कर रहा है, इसी तरह महिला प्रभाग, कला संस्कृति प्रभाग, प्रशासक वर्ग का प्रभाग, फिर शिक्षा प्रभाग जो है, इसी तरह पॉलिटिशियन विंग्स बनी हुई है जो राजनेताओं को भी आध्यात्मिक मूल्य का महत्व बताती है, समाज सेवा प्रभाग है, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट विंग है, मीडिया प्रभाग है, मेडिकल विंग है, ऐसे 20 प्रभाग बने हैं जो समाज के 20 क्षेत्र के अंदर आध्यात्मिकता का समावेश उस क्षेत्र में कैसे किया जाए वो विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। ग्राम विकास प्रभाग जो है हमारा, वो यौगिक खेती, जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती के, मनुष्य के वाइब्रेशंस किस तरह जमीन के ऊपर और अनाज के ऊपर भी पड़ता है, ऐसे कई रिसर्च प्रोजेक्ट भी लिए गए हैं। और इस तरह से अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारे चार परिसर है, पांडव भवन का जो ओरिजिनल परिसर है, ज्ञान सरोवर परिसर जहां आप रहे हुए हैं, यहाँ के परिसर को अच्छे से आपने देखा होगा, शांतिवन का परिसर जो नीचे लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ सबसे बड़ा हमारा सोलार प्रोजेक्ट है, जिसको देख करके भारत सरकार ने भी सोलार प्रोजेक्ट को अपनाया, यहाँ सबसे पहला खुला था इसलिए उस सोलार प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया वन सोलार प्रोजेक्ट, सबसे पहला आरंभ किया था 50 एकड़ में ये सोलार प्रोजेक्ट बना हुआ है। और उसके बाद हमारा चौथा जो है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम चलते हैं, विशेष कार्यक्रम जो है नशा मुक्ति का अभियान सारे भारत भर में चला रहे हैं, और बिना बाईपास ऑपरेशन किए हार्ट की नलियों को, ब्लॉकेजों को खोलने का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें करीबन आज तक 1500 पेशेंट्स के बिना ऑपरेशन के हार्ट की नलियां, ब्लॉकेजेस को खोला गया है। इस तरह से कई समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स भी ब्रह्मा कुमारीज चला रही है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स कैंपेन के रूप में, अभियान के रूप में सारे भारत भर में भी चलते हैं, जिसका साक्षी आप लोग कई जगह पर बने भी होंगे, पार्टिसिपेट भी किया होगा आप सभी ने समय प्रति समय। और ये था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किस तरह से स्थापना हुई, और आज ये विशाल वट वृक्ष किस तरह से सारे भारत भर में तो क्या, लेकिन सारे विश्व में कार्यान्वित है और चल रहा है, और सब जगह पर जो नियम बने हुए ब्रह्मा कुमारीज के, उन नियमों पर कोई भी देश के लोग हो वो उस नियम को अपनाते हैं, उस धारणाओं को जीवन में अपनाते हैं और अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाते हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आज 89 इयर्स कंप्लीट हुए, 89 इयर्स का इतिहास बताना तो मुश्किल होता है, लेकिन थोड़े से शब्द में आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिर भी अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारी किताबें भी है बाबा के जीवन चरित्र की, आप पढ़ सकते हो, उसमें और डिटेल से आपको
उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।